समझना चाहिए कि गीता में कोई दोष नहीं है, उसको ये खोज करना चाहिए कि क्यों नहीं सुधार हो रहा है। गीता का अभ्यास करता है और सुधार उसका नहीं हो रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि गीता में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि तुम्हारा एक प्रकार से उससे कोई उल्टा नुकसान हो। ऐसी बात भी नहीं है कि तुम वहां के वहां ठहरे रहो, इस प्रकार की कोई गीता के बीच के मां कोई आपने मात्रा भरी हुई नहीं है, कोई इस प्रकार का गीता का कोई असर नहीं होना चाहिए कि उसका पाठ कर करके उल्टी खराबी हुए या पाठ कर करके और आगे बढ़ने से रोके। तो ये सोचना चाहिए कि ये बात क्या है। तो सोचने से थी उस साधक में कोई न कोई कभी मालूम दी। दूसरी बात यह है कि वे सत्संग करते हैं तो हमारा कोई सुधार नहीं हुआ, जो सत्संग नहीं करते हैं वे भी वैसे ही, और हम जो सत्संग करते हैं वे भी वैसे ही। तो ये समझना चाहिए कि सत्संग से भी कोई नुकसान हो, ऐसी बात तो कोई समझ में नहीं आती। और सत्संग यह कहते हो कि तुम जैसे टिके वैसे टिके रहो, यह बात भी समझ नहीं आती। इसी प्रकार से भजन जो है, ध्यान जो है, इस विषय में भी यह समझनी चाहिए कि भजन करना से एक प्रकार से ध्यान करने से कोई नुकसान है, ये तो कोई प्रकार से आप बदला ही नहीं सकते। तो फिर क्या बात है? बात यह है, एक तो हमारा जो साधन है वो दामी नहीं, हमारा साधन दामी होना चाहिए। जिस प्रकार से कि आप लोग रुपया कमाते हो और उस काम को जिस प्रकार से सुचारू रूप से करते हो, ध्यान देकर के करते हो, इसी प्रकार से साधन भी आपको आदर पूर्वक और ध्यान देकर के करना चाहिए। साधन का जब आप आदर नहीं करेंगे तो साधन आपका आदर कैसे करे? सत्संग जो आप करते हैं तो उसका आदर करना चाहिए, स्वाध्याय जो है गीता का पाठ है इत्यादि, इसका आदर करना चाहिए, जप और ध्यान का आदर करना चाहिए। आदर क्या कि जब गीता में हमारी आदर बुद्धि होगी तो हम जहाँ बैठेंगे उससे अपने बैठने के स्थान से गीता को और आदर से उच्च स्थान में रखेंगे। ये एक प्रकार से ग्रंथ साहब है, जैसे ग्रंथ साहब को मानते हैं एक प्रकार से सिख लोग, इसी प्रकार से थी हम उसका विशेष आदर करें। दूसरी बात, उसका जो पाठ जो है वो बड़े अनुराग से प्रेम से, जिससे भगवान को खुश करना है ना, तो करेंगे। ये नहीं कि रात काटने की जो जल्दी एक प्रकार से थी प्रवाह की जो चलाओ उसको। तीसरी बात, हम जो गीता की जो अध्याय पढ़े, आज कौन सी अध्याय का कौन सा विषय था, इसका अर्थ क्या है, भाव के इस पर भी ध्यान देवेंगे। कुछ आज कौन सी अध्याय का पाठ किया, बोला मिति हुई तो अरे तुमने प्रातःकाल पाठ किया, पता भी नहीं कौन सी अध्याय का पाठ किया, पांचवे नहीं याद, बोले पांचवें दो पांचवें अध्याय कर। तो उस गीता से आपको क्या लाभ हुआ? आप तो एक बेकार समय कि इतनी बेकार एक प्रकार से कर दी, तो वे बेकार की माफ की आपको लाभ होना चाहिए। गीता का पाठ आप कर रहे हो, पाठ करते करते गीता की पुस्तक आप कहां से गिर गई, आपको नींद आ गई। ये सोच रहे हो कि भी मैं कितने दूर तक पाठ कर रहा है पता ही नहीं। तो ये एक पाठ जो है तो ये गीता का आदर नहीं है। जब गीता का आदर नहीं है तो गीता के द्वारा जो आपका आदर होना चाहिए वो कैसे होगा? इसी प्रकार से भी आपने सत्संग करी, एक प्रकार सत्संगवाद भी बोले भाई, बोले विषय क्या हो, क्या विषय था, उसे याद है। अरे अभी याद नहीं, अभी तो सत्संग से आप आ रहे हो। बोले कि हमारे को थोड़ी नींद आ गई। दूसरे भाई से पूछा कि भी आप सत्संग, बोले सत्संग तो लोग तो ही बताइए, लोग तो इतना था ही वहां कि था तो वही, तो क्या विषय होया। बोले मेरा मन इधर उधर चला गया था, तो ध्यान देकर सुनी थी। तीसरे भाई से पूछा प्रसंग क्या होया, वो सुनी तो थी पर याद नहीं। जो सत्संग आपका यहां सुनकर के पीछे जाकर के याद नहीं रही, उसका पालन आप क्या करोगे। तो आपने आदर से उसका ध्यान देकर के सुने। इसी प्रकार से आप जब करते हो तो आपका मन इधर गया उधर गया, एक प्रकार से आप माला फेर रहे हो। कितनी माला फेरी ये भी पता नहीं, कितनी माला गिर गई तो पता नहीं। तो ये माला का कोई आदर नहीं है। तो किस प्रकार से, एक तो जो माला जो है भगवान के नाम का जो जप है उसका तार नहीं टूटना, और जब करने के वक्त में खूब प्रसन्नचित रहना चाहिए कि देखो भगवान के नाम का जप जो हो रहा है तो मेरे से भगवान की मेरे पर बड़ी भारी कृपा है। जब भगवान के नाम का जप हो रहा है, जप करने के समय के वहां उसके अर्थ का भी थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए, भगवान का जो स्वरूप उसका ज्ञान रहना चाहिए। और वो जप जो है तो निष्काम भाव से करना चाहिए और विश्वास पूर्वक करना चाहिए कि जब करने से निश्चय हमारे पापों का नाश हो जाएगा, कोई शंका की बात। तो ये एक प्रकार से उस पर विश्वास रहना चाहिए, फिर आपको जरूर रसूलाह होगा। इसी तरह से आप ध्यान करते हैं तो ये ही बात ध्यान के विषय में समझनी चाहिए। परमात्मा का ध्यान आप करते हैं तो ध्यान करने के साथ साथ के मां भगवान की लीला का अपने मन से दर्शन करना चाहिए कि मानो भगवान की लीला हो। मैं रामायण का पाठ करता तो एक प्रकार से श्री रामचंद्र जी का विषय है, तो मेरे मन से ऐसी बात दिखती मानो रामचंद्र जी है, लक्ष्मण जी है, सीता जी है, अमुक आश्रम होंगे, तो उनका चित्र माना वो आश्रम का चित्र, वो जन का चित्र जैसा उनका वास्तविक फोटो था, श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता का, ये कोई असली फोटो तो देखा नहीं तो क्या पता है। एक प्रकार से ऐसी ये कल्प ऋषियों का आश्रम कैसा होता है ये पूरा पता नहीं, किंतु एक प्रकार से इस तरह का अर्जुन जी उसको अपने लोगों को सुना रहे हैं, तो मानो एक प्रकार से भगवान के भाव से भावित होकर के हम कह रहे हैं, तो पूरी प्रकार से उसका भाव हमारे हृदय के वहां आता है। इस प्रकार से हम रामायण निज में पढ़ें या लोगों को सुनावें तो उस तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो भगवान की लीला के साथ साथ में भगवान का जो स्वरूप है उसका रूप और नाम उसको देख देकर के मुख जोड़ा दिया। उसके बाद के बीच के मां भगवान का वो चरित्र है, उस चरित्रों के भीतर के बीच के मां भगवान के गुण और प्रभाव की तरफ हमको दृष्टि डालनी थी। और जो कुछ भगवान ने लीला की उसी का कुछ उनको तत्व है भी साथ साथ में समझना थी, तब तो उस स्वाध्याय एक बात एक ठीक है। या भगवान का ध्यान किया तो उसमें गुण और प्रभाव की तरफ में ख्याल रखा तो हमारा ध्यान करना ठीक है। शास्त्र की बातें हम महात्माओं से किसे सुनी तो सुनने के वक्त के बीच में हमको श्रुति वक्त ही मुक्त होना चाहिए। देखो भगवान की कितनी आप लोगों पर कृपा है जो ये बात आप अपने को सुनने के वास्ते मिले, और सुन करके मैंने समझ करके हृदय में धारण करनी चाहिए कि आज से अपना तो यही करना है। ये जो बात सुनी है इसको आज से काम में लेना, फिर आप देखो कि एक प्रकार का आपका जीवन बदल जाएगा। और भी एक बात मैं आपको बहुत अनुभव की बात कहता हूं, रहस्य की बात, चार बात की जाओ, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना और भगवान स्वाध्याय करने के समय के बीच के मां उसके अर्थ और भाव की तरफ ख्याल करना और सत्संग करना। ये मन के भीतर के बीच के मां निश्चय कर लेना चाहिए कि इत्थम भूति से अपना निश्चय सुधार होगा। जैसे भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति अवश्य ही हो, जैसे जल पीने से पिपासा जरूर मिटेगी, ये एकदम प्रत्यक्ष बात। इसी प्रकार से ती या चीज है इसमें कोई शंका नहीं, और रोज उसको संभाल लेना कि आज सत्संग करने के बाद मैं अपने कितना सुधार हुआ, मैंने कुर्सी कुर्सी बात धारण करी, आज ये विषय रामायण का पढ़ा तो इसके कौन सा प्रसंग था और उसमें आप कैसे हुआ, आज जप किया ध्यान किया तो जप करने से पापों का नाश हो जावे, दुर्गुण और दुराचारों का तो नाश हो है, और सदगुण और सदाचार उसके वहां बलात्कार से अवश्य आ रहे। सदगुण और सदाचार के लिए हमारे को अलग चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, भजन और ध्यान करने से हमारे में सदगुण और सदाचार का फर्क पड़ेगा, और जब सदगुण और सदाचार आएंगे तो उनके प्रभाव से सदगुण और दुराचार का नाश होगा, या समझो कि प्रकाश होता है वो अंधकार का नाश होता ही, जहां सदगुण है वहां दुर्गुण ले नहीं सकते, जहां ईश्वर की भक्ति है उस जहां के बीच के वहां पाप रह नहीं सकते। तो इस प्रकार से भी अपने रोग एक प्रकार से संभाल लेना चाहिए, रोगी आदमी एक प्रकार से जो रुपया रोजगार होता है कि भी आज कितना रोजगार हुआ, आज कितनी बिक्री हुई, अरे आपने नफा कितना बोले, आज तो 200 रुपये दस हो गए, ठीक है कल आज तो बोले 150, बोले आज 150 क्यों, कल नहीं होया 200, तो आज तो अपना और चेष्टा करनी चाहिए। तो रोज आपने रुक समान इसी तरह से थी, समझो कि अपने रोग संभाल ले, कल की अपेक्षा आज आपने क्या उन्नति हुई, क्या सुधार, तो इसका हम एक प्रकार से देखते हैं और ये समझते हैं कि ईश्वर का हमारे स्त्री बड़ा हाथ है, बड़ी कृपा है कि देखो एक प्रकार से थी, मैं क्या कोई लायक, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर मुझको एक प्रकार से संसार से निकाल करके वो मेरा उद्धार करना चाहते हैं, अब मेरे उद्धार में क्या, जब ईश्वर की इतनी दया है, इतनी मेरे ऊपर निगाह है, तो एक प्रकार से अब क्या है सकते। एक गरीब आदमी के ऊपर कोई लखपति करोड़पति को हाथ हुए तो वो निर्भय हो जाए, आप लोग ईश्वर को हाथ है आपने फिर बात की। तो इस प्रकार से थी आपने समझ कर, और चित्त के बीच के मन हर वक्त प्रसन्न है, ईश्वर के स्वरूप को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए कि उनका स्वरूप जो अपंत अपना सुंदर है, उनका रूप और धारण एक अलोक माने अलौकिक है। दूसरी बात अपने ऊपर भगवान की दया और प्रेम देख करके खुश होना चाहिए कि भगवान हमारे से कितना देखो प्यार कर रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं, कितनी हमारे ऊपर दया है, इस बात को देख देख करके हर वक्त प्रसन्न रहना चाहिए। और जो कुछ भी पूरा है इस अनिच्छा और परिच्छा से हो रहा है, तो जो अनिच्छा से हो रहा है स्वेच्छा से हो रहा है वो तो स्वयं भगवान कर रहे हैं, और परिच्छा से जो कार्य हो रहे हैं
भगवान के हुक्म से हो, इसको देख देख करके हम खुशी हैं। अब उसके माँ दया भरी हुई है, कोई भी काम हो रहा है तो उसके माँ भगवान की दया उसके माँ बहुत अप्रोच है। उस दया को देख देख कर हम खुशी हो। मुझे कोई जगह की माँ ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान की दया नहीं दिखती, भगवान का कोप दिखता है। तो उस जो कोप है तो भगवान का ना, बालक के ऊपर माता का कोप होता है तो समझदार बालक के उस कोप में भी अपना हित ही समझता है कि माँ अनिष्ट नहीं चाहती। माँ जो कोप करती है तो लड़के को शासन करने के लिए करती है, जिससे उसका सुधार। तो भगवान का कोप भी इससे बड़ा अच्छा है, उसके कोप में भी दया भरी पड़ी है। स्वेच्छा परीक्षा का ये मतलब है कि जैसे समझो कि स्वेच्छा उसका नाम है कि हम अपनी इच्छा से कोई काम करें, परीक्षा उसका नाम है कि दूसरे की इच्छा से कोई कार्य, अनिच्छा उसका नाम है कि जो ईश्वर की इच्छा से। तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो हमको तो सब में दया का प्रश्न करना है, अच्छे और बुरे में। हमारी दृष्टि में तो समझो कि सब आनंद ही आनंद भरा हुआ है। यदि कहो कि संसारिक जो लाभ होता है उसमें तो प्रसन्नता होती है, किंतु संसारिक जो नुकसान होता है तो उसमें प्रसन्नता नहीं होती। ठीक है, किंतु एक प्रकार से ये बात समझ आ जावे कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो फिर आनंद होता है। परीक्षा क्या, जैसे कोई भाई किसी को अपना लड़का बना करके और उसको अपने स्टेट का मालिक बना दिया, तो वो स्टेट का मालिक बन गया। परीक्षा, लड़को जो है उसने कोई परिश्रम नहीं किया, उसकी कोई कमाई भी नहीं, और वो जानता भी नहीं इसका एक विकास से मुझको जो लड़का बना रहे ये क्या बात क्या होगा, समझता भी नहीं। क्योंकि जब वो समझता है उस वक्त की वो उसको प्रसन्नता होती है कि वो किसी मेरे को किसी दया है कि जो 5 लाख की आसामी वाला भाई मुझको अपना लड़का बना करके सारा स्टेट तेरे नाम से कर दिया। जब ये समझता है तो उसके चित्त के वहां प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। तो ये परीक्षा से थी उसको एक प्रकार से समझो कि लाभ मिल जाए। हानि क्या होती है परीक्षा से कि हमारे पास वो कोई आदमी ने रुपया समझा और रुपया समझ कर पीछे से आकर के 4 समझो की लठ की बारी हम गिर गए, तो वो रुपया निकाल करके ले गए, रुपया भी हमारा गया और हमारा धन भी गया। ये एक प्रकार से हमारे लिए बहुत ही नुकसान हुआ। इसे के मां विचार करना चाहिए, ये जो हमारा अनिष्ट हुआ ये कैसे हुआ कि परीक्षा, ये जो हमारा नुकसान हुआ ये भी परीक्षा से हुआ, पहले जो लाभ हुआ वो भी परीक्षा। तो जो लाभ जो है हमको हुआ रत्नों का परीक्षा से, वो हमारे पुण्य का, और हमारा जो धन गया हमारे चोट लगी ये हमारे पाप का। पाप का फल तो दुख है और पुण्य का फल सुख है। तो ये परीक्षा से हमको सुख भी हुआ दुख भी हुआ। तो सुख और दुख दोनों हुए, दोनों के बीच के मैं समझो कि परीक्षा उसके पीछे में है। तो दोनों के बीच के मैं प्रसन्नता होनी चाहिए। बोला कि जो हमारे को रुपया मिला उसमें तो प्रसन्नता होती है, किंतु इस प्रकार से जो हमारे चोट लगी रुपया गया उसमें तो दुखी होता है। तो मैं ये कहता हूं कि जो आपको रुपया मिला उसमें तो एक प्रकार से भगवान की दया तो है, पर इससे भी बहुत ज्यादा दया आप उसके मां है जो आपका देखने के बाद जो अनिष्ट हो रहा है। तो जो वो बात समझ में नहीं आई, तो इसी लिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि थोड़ा ध्यान देकर सुनो, आपको जो रुपया मिला ये किसका फल है? बोले पुण्य का फल। जब पुण्य का फल आपको मिल गया तो पुण्य का खाता जो आपका उधर डेढ़ा हो गया ना, अब पूंजी नहीं रही, और ये आपको मिल गया, ये एक प्रकार से यहां से विद्या होगी, तब ये इतना नुकसान हो गया ना आपको पूंजी में। यदि आप इसमें ये भाव समझें कि ईश्वर की कृपा से ये रुपये मिले हैं और इससे लाभ उठाना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के विषय का लाभ उठाना चाहिए, तब तो परमात्मा की आपके ऊपर दया हुई जो आपको रुपया मिला। अब उन रुपयों को लेकर के यदि आप झूठ कपट करते हैं, रुपयों को लेकर के आप व्यभिचार करते हैं, मदरा पीते हैं, पाप करते हैं, तो मैं तो समझता हूं को आपको मिलने की अपेक्षा न मिलना अच्छा होता, कि रुपया जो है उससे भी आप अपने आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं और अपने आप का पतन भी कर सकते हैं, तो आपके पतन में हेतु आवे। दूसरी तरफ के बीच के में जो आपको पाप का दंड मिला, जो दंड मिला तो एक प्रकार से वो पाप का खाता हो गया ना बड़ा, एक प्रकार से तो आप हल्की होगी, और उसके दंड मिलने के साथ ही आपके हृदय में ये भाव पैदा हुआ कि मैंने कोई पाप किया था कि जिसका मैंने आज ये भगवान ने तो दंड दिया है, और वो अच्छा काम। अब इससे ये शिक्षा मिलती है कि भविष्य में पाप नहीं, जो पाप करता ही नहीं उसको क्यों दंड मिलेगा? पाप का ही तो फल एक प्रकार से दुख है ना। तो ये हमको शिक्षा मिली, रुपया मिलने के बीच के में तो समझो कि अहंकार बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, भोग बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, और उसके बीच के में समझो कि मार पड़ती है, तब एक प्रकार से सचेत होता है और भगवान याद आए, कोई मार न गया, राम 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 राम, अरे भैया ये धन ले जाओ मारो, तो भगवान याद आए ना, तो एक प्रकार से थी उसमें भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए। इसी प्रकार से थी समझो कि अनिच्छा से भी काम होता है, हमारे जो रोग बीमारी होती है ये अनिच्छा का एक प्रकार से अनिच्छा प्रारंभ का फल है, अनिच्छा के द्वारा प्रारंभ का फल है, कोई इच्छा नहीं बीमारी हमारे हो गई, ईश्वर की इच्छा से मानो प्रार्थ की कारण से मानो। इसी प्रकार से थी समझो कि और कोई स्वाभाविक ही घटना होगी, हमारे घर में आग लगी, ये हमारा लड़का मर गया, तो किसी ने मारा तो नहीं, अपने मौत मर गए, तो ये है अनिच्छा प्रार्थ का भोग, पाप का फल है। दूसरा एक पुण्य का फल भी होता है कि एक प्रकार से अपने घर के वहां कोई मकान एक चीज उसके दाम बढ़ गए, एक लड़का पैदा हो गया, एक समझो कि गड़ा हुआ धन मिल गया, तो किसी दूसरे की इच्छा तो नहीं, इसमें अनिच्छा ईश्वर इच्छा है, इस प्रकार से अनिच्छा से थी उनका फल भी प्राप्त होता है, पाप का फल भी प्राप्त होता है, सुख जो है उनका फल है और दुख है पाप का फल है। सोचा से भी ऐसा होता है, एक प्रकार से हमने कोई व्यापार कर लिया, उस व्यापार में नुकसान भी हो जाता है, नफा भी हो जाता है, तो नफा जो है वो पुण्य का फल है और नुकसान है वो पाप का फल है। तो अनिच्छा परिच्छा सोचा तीन प्रकार की इच्छा से कर्मों के फल का भोग होता है, तो स्वेच्छा पूर्वक जो हम काम करते हैं वो तो भगवान की आज्ञा की माफ करना, भगवान के हुक्म की माफ करना चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए कि जितना हमारी तकदीर में उतना रुपया हमको मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा, और ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की मर्जी है उससे बस मिल नहीं सकता, वो हम पाप नहीं करेंगे तो भगवान छप्पर तोड़कर हमारे घर में दे जाएंगे। جو ہمارے تقدیر میں لکھا ہے اس کا ہی یاد تو ہم کیوں کریں پاس. یہ بھگوان کے اوپر وشواس رکھنا چاہیے, پرارتھ کے اوپر وشواس رکھنا چاہیے. جس پرش کو ایشور کے اوپر اور پرارتھ کے اوپر وشواس ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں. پرتھویوں کے لیے پھر بولے وہ تو سمجھو کہ پران جانے پر بھی جھوٹ نہیں بولتا جس کو ایشور پر وشواس ہے. تو ایک پرکار سے ہم کو ہر ایک کام کے ماں ایشور کی دیا کا درشن کرنا چاہیے. آپ جو لاب کے سمے کے بیچ کے ماں کوئی پریچا سے انیچا سے آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے اس سمے کے بیچ کے ماں آپ ایشور کی اپنے پر دیا سمجھتے ہیں وہ بھی دیا ہے. ایشور نے وہ آپ پر دیا کس لیے کی ہے کہ جو کچھ آپ کو بھگوان نے شکتی دی ہے یا جو کچھ آپ پر اپکار کیا ہے تو اس لیے کہ آتما کے کلیان کے لیے پرماتما کی پراپتی کے لیے. تو جس ادیش سے بھگوان ہمارے کو دیا اسی ادیش میں اس کو لگانا چاہیے. جسے نہیں لگاتے ہیں تو ہم بے ایمانی کرتے ہیں. ایک بھائی آپ کو 2000 روپیہ دے گیا کہ یہ 2000 روپیہ جو ہے اس کو آپ سادھوؤں کو کپڑا بنا دو اور ہم اس سادھوؤں کو تو کپڑا نہیں بانٹیا اور سمجھو کہ اپنے بیٹی جوائی اور بھانجوں کو دے دیا تو ہم نے چوری کری. کہا کہ سادھوؤں کی سیوا میں لگا دیا کیونکہ سادھوؤں کی سیوا میں نہیں لگا دیا ہم گاؤں کی سیوا میں لگا دیا گایوں کی سیوا میں. تب ہی ہم ایک پرکار سے انچت کیا. کیوں انچت کیا کہ وہ تو کہہ گئے تھے سادھوؤں کی سیوا میں لگا تم لگا دیا پشوؤں کی سیوا میں تو یہ بھی ٹھیک نہیں کیا. اور بیٹی جو آئی تھی کہ اپنے سواس میں ہم روپیہ لگا دیا تب تو بڑا بھاری انیائے کیا بڑا بھاری انیا کیا. اسی پرکار سے تھی بھگوان نے ہم کو جو روپیہ دیا چیز دی اپنے آتما کے کلیان کے لیے. میں نے اپنے آتما کا کلیان کرنا چاہیے تھا بھگوان کی بھکتی کے میں ان روپیوں کو لگانا چاہیے تھا اس لیے بھگوان ہم کو روپیے دیے. کنتو اس کام میں نہیں لگا سکے ہمیں سارا میں بھوگا میں ہم لوگ لگا نہیں تو وہ ایک پرکار سے چوری کر. دیوتا لوگ جو ایک پرکار سے ہم لوگوں کو برسا کے دوارا سب انادی دیتے ہیں اور اس دیوتاؤں کے بنا پوجا کیے بنا استی کیے بنا ہون کیے اس کو ہم اپنے آئس آرام بھوگوں میں لگا دیتے ہیں تو بھگوان نے گیتا میں کہا کہ وہ ایک پرکار سے چور ہے کہ دیوتوں کا دیا ہوا دیوتوں کو بنا دیے ایک پرکار سے تھی اپنا اس کا بھوگ کرتا تو وہ چور ہے. ہمارے ماتا پتا ہم لوگوں کو بہت سا دھن دے کر کے مر گئے. یہ مرنے کے بعد ہی ہمارا سرا دیا ترپن کرے گا اور جو نالائک لڑکا سرا ترپن نہیں کرتا ہے تو اس کے ماتا پتا کی آتما کوشش دیتی ہے کہ ہم کتنا دھن چھوڑ کر کے آئے کنتو یہ نالائک 100 روپیہ میں 1 روپیہ بھی ہمارے لیے نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پرکار سے چور ہے ماتا پتا کے دھن کی ہم چوری کر رہے ہیں ان کے ادیش کے بھی.